ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 23 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइप्रस लंबे समय से भरोसेमंद साझेदार रहा है।
साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार 150 मिलियन डॉलर पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और बंदरगाह विकास, पोत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी सुधारों के जरिए भारत में आ रहे बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है और वित्तीय समावेशन वैश्विक उदाहरण बन गया है। श्री मोदी ने भविष्य में विकास को गति देने के उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ऊर्जा मिशन जारी हैं। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौते की सराहना की तथा इसे सीमा पार वित्तीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री आज राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, डिजिटल साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श की संभावना है। भारत यूरोपीय संघ साझेदारी और भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे वैश्विक घटनाक्रमों पर भी बातचीत हो सकती है। आज श्री मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के साथ ही प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा संपन्न हो जाएगी। श्री मोदी साइप्रस से कनाडा के कनानास्किस जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया जाएंगे, जहां और वहां के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक और प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविक के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 जनगणना कर्मी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ ये अभियान संचालित करेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के 3 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने हादसे में मारे गए 80 मृतकों की पहचान की पुष्टि की है। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अपर अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
80 डेड बॉडीज का सिनाप एंड डीएनए मैचिंग हो गया है। उनके रिश्तेदार से 100% कांटेक्ट हो गया है कि वो उनकी हिसाब से उनका डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे। 33 डेड बॉडीज जो थे मैच हुए थे वो सबमिट करके वो ले गए हैं।
गुजरात सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दुखद निधन पर आज राजकीय शोक की घोषणा की है। आज शाम राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करने पर भी विचार विमर्श की आशा है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी तट पर तेज से बहुत तेज वर्षा की गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ वर्षा की संभावना है। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान में कल भारी गिरावट आई। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अभी भी तेज वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।